نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سورة نساء آيت نمبر 24 پانچویں پارے کی پہلی آیت سے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ شروع کریں گے اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اللہ تعالی نے محرمات یعنی وہ عورتیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ان کی لسٹ بیان کی تھی آیت 23 میں اب اس میں ایک اضافہ ہوگا اور وہاں سے بات شروع ہوگی تھوڑا سا اس آیت کو سمجھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس پہ ہم مزید بات کریں گے ذہن میں رکھیے گا پچھلی آیت حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و خواتکم اس آیت کے اندر ہم نے کتنے رشتے بڑے تھے سات نسب سے سات رضاعت سے اور سات سحر سے 21 رشتوں کی بات اس میں ہوئی تھی اب اس لسٹ میں ایک 22 قسم کا اضافہ ہو رہا ہے کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمحصنات من النساء اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی اور کے نکاح میں ہوں ہر شادی شدہ عورت بھی دوسرے تمام مردوں پہ حرام ہے چاہے رنگ فرق نسل فرق گورا ہے کالا ہے عرب ہے عجم ہے کہاں سے آیا کدھر سے گیا کس عمر کا ہے کیونکہ جب ایک عورت کسی کے نکاح میں آ جاتی ہے تو وہ اس نکاح میں رہتے ہوئے دوسری شادی نہیں کر سکتی اتنی بات واضح ہے یہ عورت کب تک حرام ہوگی نمبر ایک جب اس کا شوہر فوت ہو جائے اس کی حرمت کے ختم ہونے کی چیزیں اور وہ اس کی عدت سے فارغ ہو جائے یعنی کوئی شادی شدہ عورت کسی بھی دوسرے مرد کے لیے حلال کب ہو سکتی ہے جب اس عورت کا شوہر وفات پا جائے اور اپنے حالات کے مطابق وہ عورت اس کی بیوگی کی عدت کو پورا کر لے دوسری صورت کیا ہے کہ اس کا شوہر اس کو طلاق دے دے کیا بس ابھی طلاق دی اور وہ دوسروں پہ حلال ہو گئی ہرگز نہیں طلاق بھی وہ دے جس کے اندر رجوع کا حق ختم ہو چکا ہو یعنی یا تو وہ 3 طلاقیں دے دے 3 طلاقیں دے گا تو وہ آف کورس 3 مہینے میں تو قدرتی طور پہ ہی وہ معاملہ ہو جائے گا یا پھر 1 طلاق دے کر خاموش ہو جائے تو 3 مہینے گزر جائیں بات سمجھ گئے یعنی ایک شخص طلاق دے پھر وہ اس مرد کی طلاق کی عدت میں سے نکل آئے پھر دوسرا کوئی مرد اس سے نکاح کا ارادہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے بات واضح اتنی بات کلیئر ہو گئی اب ایک عورت ہے کسی اور کے نکاح میں ہے دوسرے کے لیے حرام ہے اس عورت کو اس کا شوہر طلاق دے دے تو دوسرے مرد اسے نکاح کا سوچ سکتے ہیں تو یہ حرمت ابدی نہیں ہے یعنی یہ حرمت کب تک ہے جب تک اس عورت کا شوہر موجود ہے ابدی کیا ہوتا ہے ہمیشگی کے لیے پہلی بات سمجھ آ گئی اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو شادی شدہ عورت کہتے ہیں تو یہاں تو والمحصنات کا لفظ استعمال ہوا تو کیوں تو آئیے ذرا اس لفظ کو دیکھیے اس کے اندر ایک دنیا چھپی ہوئی ہے عربی زبان میں یہ جو لفظ محصنہ ہے ہا سوات نون سے ہے حسن عربی زبان میں کہتے ہیں قلعے کو آپ کو اکثر ایک بک ریکمینڈ کی جاتی ہے دعاؤں کے نام پہ حسن المسلم اس کا بھی یہ مطلب ہوتا ہے کہ مسلموں کا قلعہ کیونکہ دعا مومن کو ایک قلعے کی طرح سمیٹ لیتی ہے انسان محفوظ ہو جاتا ہے اس کے اندر جو لفظ چھپا ہے نا وہ ہے الاحسان سین سے نہیں یہ احسان نہیں ہے جو اردو میں ہم کسی پہ کرتے کراتے ہیں الاحسان کسی چیز کی حفاظت کرنا اس کو محفوظ رکھنا اس کے بنیادی معنی کیا ہوتے ہیں جیسے عربی زبان میں کہتے ہیں حسن المکان یحسنو جگہ کا محفوظ ہونا اس طرح کہ اس تک پہنچنے کی راہ نہ ہو اسی سے پھر محفوظ جگہ کو حسین کہا جاتا ہے آپ نے ایک دعاؤں کی بڑی پرانی کتاب ہے حسن حسین حسن حسین کئی لوگ اس کو پڑھتے ہیں حالانکہ وہ حسین لفظ ہوتا ہے وہ بھی یہی لفظ ہے حسن حسین یعنی خوب مضبوط قلعہ ٹھیک ہے تو عربوں نے کہنا ہو کہ اس نے اسے محفوظ کر دیا تو اس کے لیے لفظ بولتے ہیں حسنہ واحسنہ تو ایسی محفوظ جگہ جہاں کوئی رسائی نہ کر سکے اس کو الحسن کہتے ہیں اب ذرا اس لفظ کو ایک شادی شدہ عورت پہ لائیے آپ نے دیکھا کہ فیس مانا جو بھی حالات بگڑ بھی گئے لیکن پھر بھی ابھی تک ہر کلچر میں شادی شدہ عورت दूसरे मर्दों की नजरों से हट जाती है। एक किसी के घर में बच्ची है, रिश्ते आ रहे हैं, लोग सोच रहे हैं उससे कर दें उससे करा दें। इधर किसी का रिश्ता हुआ, सबकी नजरों से हट गई। शादीशुदा औरतों के बारे में तो नहीं लोग सोचते, इसके बरक्स आप देखिए कि कुछ लड़की शादी हुईशुदा हुई लेकिन बाद में फिर अलग हो गई, अकेली रही, डिवोर्स्ड है या बेवकी है, तो आप देखिए हर बंदा उसके बारे में सोचता है, हाय वो अकेली रहती है, हाय वो बेचारी, हाय उसका कहीं कर दे, हाय उसका जोड़ो, तो गोया कि वो किले की हद से बाहर आ गई है। मर्द या लड़के नॉन महरम हो सकता है उसके बारे में या दूसरे एंगल से सोचते हों कि ये अवेलेबल है, हम ट्राई कर लेते हैं, लेकिन एक कल्चर में, एक सोसाइटी में रहते हुए बुजुर्ग बूढ़े, उसकी दोस्तें, उसके साथ रहने वाले साथी भी उसके बारे में सोचने शुरू होते हैं। जबकि शादीशुदा औरत एक किले में महफूज हुई, अब वो पूरी तरह पाक हो गई। इतनी बात तो बात से हो गई ना आपको कि ये चीज़ हिफाजत के ज़िम्मन में आती है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि सूरत यूसुफ में हम ये लफ्ज़ पढ़ेंगे, गंदम जो ज़खीरा की जा रही थी ना कहत के दिनों में, उसके लिए जो अल्फाज आए मिम्मा तो हिस्सून, गालिबन चेक किया जा सकता है कि जिसको तुम हिफाजत के लिए रखोगे। इसी तरह आप देखिए हसान उस औरत को कहते हैं जो पाक दामन हो और अपनी इफ्फत को महफूज रखती हो। मोती को भी हसान कहते हैं, क्यों भला, कि वो सीप में महफूज होता है। अब एक औरत की पाक दामनी दो तरह से महफूज होती है, एक तो ये कि वो गैर शादीशुदा हो, अभी किसी मर्द की रसाई में नहीं आई और अपनी इज्जत को महफूज रखे, दूसरा ये कि वो शादी करके सिर्फ एक मर्द की रेंज में आ गई और गैर मर्दों के आंखों नजरों उसके हाथों से महफूज हो गई। तो बहरहाल आप देखिए कि फिर हिस्सन का लफ्ज या मुहसिना का लफ्ज किस किस मानी में इस्तेमाल हुआ, अब ये लिखिएगा। नंबर एक शादीशुदा औरत जिस पे अभी तक हम बात कर रहे हैं, दूसरी पाक दामन औरत। मुहसिना बदकार औरत के ऑपोजिट में आता है अरबी में, चाहे वह वो शादीशुदा है कि नहीं है, यानी वो औरत जो बिल्कुल पाक दामन होगी वो मुहसिना होगी, और जिसकी पाकदानी मशकूक हो गई वो फिर दूसरी तरफ चली गई। ठीक है, इसी तरह से मुहसिना का लफ्ज जो है ना ये इस्तेमाल होता है लौंडी के मुकाबले में भी, आजाद औरत। तो तीन लफ्ज हैं, शादी, पाक दामनी, आजादी, याद रखें, ये एक सीक्वेंस भी बन जाता है ना। तो क्या पता चला, वल मुहसनातु मिनन निसा में, और वो सारी औरतें हराम है। कौन सी? नंबर एक जो किसी के निकाह में है, नंबर दो जो किसी की लौंडी के मुकाबले में है। असल में इस आयत के पीछे एक शान नजूल भी है, जंगे जब होती थी तो जंगों में जो भी लोग बच जाते थे फिर वो दूसरे फरीक को लौंडी या गुलाम बन के मिल जाते थे, ये चीज आपने इस्लाम की देखी है। तो जंगों में पकड़ी हुई औरतें भी मुराद है। असल में इसके पीछे एक वाक्य मैं आयत पूरी करके कोशिश करूंगी आपको दूं, क्योंकि ये वो आयत है जिसको बुनियाद बनाकर बस लोग इस्लाम में लॉन्डीज़म और गुलामी और इसके ऊपर बहुत ही बातें करते हैं। तो वो एंगल इंशाल्लाह आगे एक जगह आ रहा है, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ बस इतना भी समझ लीजिए कि वल मुहसनातु मिनन निसा, इससे मुराद वो औरतें हैं जो किसी निकाह में हों। बाज़ दफ़ा जंगों में जो लौंडियाँ बन के खवातीन आती थी वो शादीशुदा होती थी, क्योंकि आप सारे कुंवारे तो नहीं आते थे, और वो तो इस सोच से आते थे ना कि जंग में हम जीत जाएंगे। अब जब जंग में हार गए तो वो औरतें जो थी वो फिर दूसरी तरफ आए, तो जिनको वो मिलती थी उनके जहन में क्वेश्चन होता था कि ये तो फलां की बीवी है, अब हम इसके साथ ताल्लुक कायम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो उसके यहाँ कुछ कवानीन दिए गए कि ऐसी औरतों के साथ एकदम कोई भी नहीं ले सकता, और ये नहीं कोई लूट नहीं मची हुई कि जिस औरत पे जिसने हाथ डाला ऐसा हुआ, और सारी कोई खूबसूरत औरतें नहीं होती थी, कटी फटी बूढ़ी हर तरह की औरतें होती थी, तो वहां भी शरायत रखी गई। लिख लें, बल्कि अभी बात चल रही है तो फिर यहाँ शरायत भी लिख लें कि जब लौंडी किसी जंग से मिलती थी तो अपनी मर्जी से हर सिपाही नहीं ले सकता था। जैसे देखिए शादी क्या है, आप जरा अकल से पूछे ना तो अल्लाह माफ करे, बहुत अकल इस्तेमाल करने वालों ने अगले दौर में शादी में इतनी मसरूफियत हो जानी और चीजों में कि ये निकाह की रस्म खत्म ही कर देनी है कि क्या मौलवी साहब आते हैं और कबूल है कराते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो निकाह क्या होता है, बाप और शौहर के बीच में एक एग्रीमेंट है। बाप कहता है मैं अपनी बेटी तुम्हें देता हूं इतने हक महर के, बस बात समझ चुके हैं ना आप लोग। बस जो काम आम हालात में बाप करता है ना, लौंडी के जिम्मन में ये काम इमाम वक्त करता है, खुलफाए राशिदीन में या खलीफा है या अपने दौर में नबी सल्लम थे वो करते थे। बाप अपनी बेटी का हाथ पकड़ाता है ना दामाद के हाथ में कि ये ले लो और ये तुम्हारी अब हुई और तुमने इसका ख्याल करना, ये तुम्हारा ख्याल करेगी। लॉन्डी में क्या होता है कि जो मुस्लिम जरनैल है, जो लीडर है, जो बड़ा है, वो अपनी मर्जी से उनको बांटता था, और इस्लाम ने ऐसे मैयर्स लिए, ऐसे रास्ते इख्तियार किए कि आज आपको दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ दिखती नहीं है। इस्लाम से पहले की ये चीज़ थी ना, इस्लाम ने इसको शुरू किया पर ना इसको प्रमोट किया। ये ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से इस्लाम ने ये चीज़ें लाकर इंसानों को बताई हैं कि देखो अब ये ख़त्म कर दी गई है। ये जहन में रखिएगा कि इस्लाम ने इसको ख़त्म किया है। तो बहरहाल जब बात कर रहे हैं हम कि जंग में लौंडियाँ आती थी, तो उसका तरीक़ाकार यही होता था कि इंतज़ार करता था सिपाही, जब तक वो अपना मालिक है वो इसको नहीं देता था तब नहीं देते थे। दूसरी बात ये है कि 1 महीना वेट करते थे, पता चल जाता कि वो औरत प्रेग्नेंट नहीं है, पीरियड्स आ जाते, इत्मीनान हो जाता, फिर उसके बाद चाहता तो उससे ताल्लुक़ कायम करता, और चाहता तो उससे ताल्लुक़ कायम नहीं करता था। कोई ज़रूरी नहीं होता था कि ताल्लुक़ कायम करें, और बस लोग अपनी लौंडियों के साथ खुद ताल्लुक़ नहीं कायम करते थे बल्कि किसी दूसरे के निकाह में दे देते थे। यही चीज़ अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो बहुत सारे सवालात उठते थे उस दौर में, और याद रखिए कि ऐसी लौंडी से अगर औलाद पैदा होती थी तो वो उस मालिक की सुलभी औलाद होती थी, उसको पूरा हिस्सा विरासत में मिलता था, लेकिन अगर वो मालिक फौत हो जाए तो वो लौंडी आज़ाद हो जाती थी, उसके बाद उसका मामला ख़त्म हो जाता था। तो बाकी रह गई बात कि यहाँ जो बात कर दी गई अल्लाह सुबहाना तआला ने, वो क्या है कि वल मुहसनात मिनन निसा, औरतों में से बाकी सारी औरतों से भी तुम्हारा मामला ऐसे पाकदामनी का है, इल्ला मा मलकत ईमानुकुम, सिवाय इसके जो तुम्हारी मिलके यमीन बन जाए। ये है वो बात जो मैंने अभी बताई है। मिलके यमीन कब बने? जब जंग के नतीजे में तुम्हारे पास कनीजें बनकर आ जाएं। ये औरतें अगरचे मुशरिकों की बीवियां होती थीं, लेकिन वो लौंडी की हैसियत से आपके लिए जायज होंगी। जी
खुद भी मुशरिक थी, अगर वो मुशरिकों की बीवियां थी तो फिर ये इनको मुसलमान करना जरूरी है?
जी जब ये तदरीजी कवानीन थे, मुशरिक की औरतें होती थी, इस्लाम वाली लौंडी तो इस्लाम के खिलाफ जंग लड़ने नहीं आएगी ना, तो ये बिल्कुल इब्तदाई दौर की बातें थी। लौंडियाँ मुशरिक ही होती थी, जैसे मुशरिक गुलाम होते थे, तो वो फिर जब इस हद से मिलती थी, उस वक्त तक अभी मुशरिक औरतों से निकाह की वो पाबंदियां नहीं थी, तो इसके से निकाह नहीं होता था। ये वही मैंने आपको बताया कि कमोडिटी, जैसे किसी को तलवारें मिली बेच लो, किसी को तीर मिले मैदाने जंग में बेच लो, तो लौंडी उसको बेच दो। बिकती थी औरतें, जैसे लोग काम करते थे मशीनों की तरह, लोगों के से काम होते थे, तो फिर वो मुशरिक औरत भी जायज़ होती थी उस हालात में। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखिए कि यहाँ जो बात है ना, इल्ला मा मलकत ईमानुकुम, सिवाय इसके जो तुम्हारी मिलके जमीन में बने, ये कौन सी हैं? वल मुहसनात। अब इसको ऊपर से जोड़े ना, आप इसको एक सवाल बना लें कि कौन सी शादीशुदा औरत जायज है मर्दों के लिए? है वो शादीशुदा, बट उस मुसलमान को वो मैदाने जंग में से लौंडी की सूरत में मिली। कितनों को ये बात समझ आ गई है? क्लियर है ना, कोई मुश्किल बात तो नहीं है, क्योंकि इस एंगल से मैंने पहले कभी हाईलाइट नहीं कराया, इस दफा मैंने इस पॉइंट को थोड़ा सा रेस किया। आप समझें कि निकाहशुदा औरतें मर्दों पर हराम होती हैं, सिर्फ एक सूरत जायज है कि वो निकाहशुदा औरत किसी मैदाने जंग में गई और वहां से लौंडी बनाकर दूसरे मुसलमान किसी को मिल गई, समझ आई, और वहां जाकर फिर वो उसके लिए जायज भी होगी, लेकिन उसके साथ सारी शरायत होंगी, वो मलकियत के तमाम दूसरे हकूक की तरह वो मालिकाना हकूक उसके वो नहीं होंगे जो एक आज़ाद औरत के साथ निकाह की सूरत में होते हैं, लेकिन बहरहाल वो औरत जो थी वो उस मर्द की तसरुफ में चली गई, तसरुफ कह लें, कोई ज़रूरी नहीं होता उसको बीवी बनाए, वो उसके साथ सिर्फ काम करवाता रहे उसे घर का, उससे कोई कमाई का जरिया बना दे, लेकिन इस्लाम ने इन सारी चीज़ों को वक्त के साथ साथ ख़त्म कर दिया। इसीलिए आप देखते हैं कि ये सब कुछ जो है वो अब नज़र नहीं आता, और ये जो ईमानिकुम है ये यमीन से है, या मीम नून इसका रूट है, यमन यूमन कहते हैं बरकत को, अरबी जुबान में यूमन कहते हैं बरकत को, मैमना का लफ्ज़ सुना, अस्हाबुल मैमना, दाएं हाथ वाले, तो वो क्या है, बरकत वाले, दाएं हाथ में बरकत है, इसीलिए सीधे हाथ से खाना पीना चाहिए, काम करना चाहिए। कसम को यमीन क्यों कहते हैं? क्योंकि दाया हाथ दाएं हाथ पे रखते थे, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे शेक हैंड करना, हाथ पे हाथ डाल के वो कसम खाते थे, इसलिए कसम को भी यमीन कहते हैं। जी
इसमें ईमान का मतलब लौंडी लिखेंगे या दाया
माँ मलकत अईमानुकुम, माँ मैंने जो मलकत मालिक हो गए, अईमानुकुम तुम्हारे दाएं हाथ। तो दाएं हाथ मालिक होने, ये एक लफ्जी तर्जमा किया गया लेकिन मुराद इससे लौंडी है। बात वाजी है, यानी कि जो भी औरतें इस तरह की आएंगी वो उसमें ऐसी होंगी कि जो उनके पास लौंडी बनाकर ला दी गई। और ये लफ्ज़ अरबी में बहुत कसीरुल मानी है, मुख्तलिफ तरीके से ये सब कुछ समझ आता है। तो अल्लाह सुबहान तआला कहते हैं कि जब वो तुम्हारे पास लौंडी की सूरत में आएंगी तो फिर जायज़ है। और आपको पता है ऐसी लौंडियों से मुखातबत भी की जा सकती है। वो कह दें हमने लौंडी नहीं रहना, कितने की खरीदी है, 10,000 की, चलो आज से जो मैं काम करूंगी उसको मेरी पे समझ के काटते जाओ, जिस दिन मैंने 10,000 तुम्हें पूरे वापस कर दिए काम की सूरत में मैं आजाद होंगी। इसको मुकातबत कहते हैं, सूरह नूर में आएगा। तो जब कोई लौंडी या गुलाम ये करना चाहे तो मालिक को लाजिम है कि वो उसकी इस ऑफर को कबूल करे। तो इस्लाम ने बहुत खूबसूरत तरीके से हर कफारे में लौंडी गुलामों को दिया। हजरत उस्मान हर जुमे एक गुलाम आजाद करते थे, किसी जुमे एक नहीं कर पाते थे तो अगले जुमे दो कर देते थे, बहुत अजर दिया। इतनी बरकत, इतना कुछ सुनाया गया कि एक गुलाम के बदले, जिस्म के हर उस के बदले अल्लाह ताला उसे आजाद कराने वाले का हर वो उस जहन्नुम से आजाद करेंगे। तो ये सारा कुछ पढ़ के वाकई एहसास होता है ना कि ये वो चीजें हैं कि जिसको अल्लाह सुबहाना ताला चाहता है कि आम हो। विमेन राइट और ह्यूमन राइट असल में ये है। आज आप देखिए डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली लोग गुलाम हैं, पूरी पूरी कौमें गुलाम बनी हुई हैं। गुलाम क्या लौंडियां बने हुए हैं, लौंडियां और गुलाम दोनों ही हैं। सोच दूसरों की, सब कुछ दूसरों के है। तो इसलिए अल्लाह सुबहाना ताला ने यहाँ ये चीज़ें हमारे सामने रखी कि हम इस पर गौर व फिक्र करें। फिर इसके बाद आप देखिए कि अब यहाँ बात पूरी हो गई, इल्ला मा मलकत अईमानुकुम किताब अल्लाह अलैकुम, ये अल्लाह का लिखा हुआ फर्ज है। इस एक जुमले में जहनों में उठते हुए सारे सवालों को बंद कर दिया, लौंडी क्यों, गुलाम क्यों, वो तो शादीशुदा थी, वो तो ऐसी थी। और इसके ज्यादा मसले हम पढ़ेंगे जाके इस फॉर्म के, जो भी यहां पढ़े ना ये पढ़ेंगे सूरह मुमताहिना में। उसमें प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिखाई गई हैं कि कैसे उनकी औरतें तुम्हारे पास आ जाएं तो तुम क्या करो। क्योंकि अब सवाल उठता है कि अगर मुसलमानों की औरतें काफिरों के पास चली गई तो क्या होगा, जंग जीत तो मुसलमान भी सकते थे, हार भी सकते थे, दोनों ही के लिए थी। लेकिन प्रैक्टिकली आप देखिए कि अल्लाह ताला का ये एक मुजजा कह लें नबियों के तौर पे कि मुसलमानों को कभी शिकस्त ही नहीं हुई इस तरह की। गजवे अहद में जब वक्ती किस्म की भगदड़ मची थी, इसके अलावा नबी सल्लम की जिंदगी में होने वाली कोई जंग जो थी वो नहीं हारी गई। यानी ये प्रैक्टिकली सूरत हाल पेश ही नहीं आई कि कोई मुसलमान औरत जमेदाने जंग में किसी काफर के हाथ लग गई हो। ये देखिए अल्लाह की कुदरतें दिखती हैं, रिसोर्सेस नहीं थे, असबाब नहीं थे, बाकी चीजें नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला ने करके दिखा दिया ये सब कुछ। तो इस चीज से पता चलता है कि ये कवानीन अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं, अल्लाह ताला ही इन चीजों को चला सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत ऐसा खूबसूरत निजाम जिंदगी दे नहीं सकती जो कि अल्लाह सुबहाना ताला ने दिया, और बहुत ज़्यादा इनके ऊपर अकल नहीं लगानी चाहिए। याद रखिए बहुत सारे लोग उन बातों पे जिसको ना बदल सकते, जो आज एग्जिस्ट नहीं करती, एनर्जीज लगाते हैं, नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाकर पेश करते हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह सुबहान तआला ने आपके मेरे लिए रास्ते जो हैं वो सीधे कर दिए, खोल दिए और इन चीज़ों को हमारे सामने पेश कर दिया। फिर इसके बाद अब यहाँ आपको बात वाजे हो गई, आयत 23 में शुरू हुई थी हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, ये 24वीं आयत के मिडल में आकर ये बात पूरी हो गई, खत्म। अभी तक टॉपिक क्या था, किन से निकाह नहीं हो सकता, साथ है मेरे। अब आयत के अगले हिस्से पे गौर करें। अब अगले हिस्से में क्या कि फिर निकाह होता है तो किससे होता है और कैसे होता है। यानी अब इस आयत का अगला हिस्सा हमें क्या बताएगा कि इनके अलावा दूसरी तमाम औरतों से निकाह हलाल है। ठीक है, मुसलमान औरतों से निकाह हलाल है, और निकाह करने की शराइत क्या है। अब यहां से आप लिख सकते हैं कि निकाह के तरीके या निकाह के इंग्रेडिएंट्स मैं अक्सर बोलती हूं इसके ऊपर, क्योंकि हर चीज कुछ चीजों से मिलकर बनती है ना। तो इस्लामी निकाह क्या होता है उसके बारे में इंशाल्लाह अल्लाह ताला फरमाते हैं वह उहिल्लकुम, आयत को देखेंगे तो समझ आएगी। वा और ओहिल्ला लकुम, और हलाल किए गए तुम पर। ये जो लफ्ज ओहिल्ला यहां बोला किसके मुकाबले में आया, कोई बोलेगा? हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, शाबाश, हराम की गई तुम पर, उसके मुकाबले में यहां क्या आ गया, ओहिल्ला लकुम, यानी और हलाल कर दी गई तुम पर माँ वरा जालिकुम, जो इन सब के अलावा हैं, यानी ये माँ, खाला, पुप्पी, चची, जो जो रिश्ते पड़े हैं, इनके अलावा बाकी औरतें तुम मर्दों पर हलाल हैं। बात वाज़ह, कितना करेक्ट और एक्यूरेट रिलीजन है हमारा। आप इसको देखें, हमारा दीन 2+2 का दीन है रियली। इसमें दिमाग को इधर से उधर अगर आप ना करें ना, हर सवाल का जवाब आपको मिलता है। हैंकी पैंकी नहीं, इधर चले उधर चले, ओके एक्चुअली एक्चुअली ये वो नहीं, बस कह दिए माँ वरा ज़ालिकुम, इसके अलावा जोर है। और आप देखिए कि इतना बिग इशू एक आयत के अंदर हल किया जा रहा है। सिर्फ एक आयत में सारी डिटेल बताई, और आप देखिए एक ही आयत तकरीबन पीछे जो थी, और दूसरी आयत में तो सिर्फ एक लफ्ज़ था मुहर्रमात की, तो पूरी लिस्ट बयान कर दी। ये कुरान का मिजाज है, ये अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ताला किस तरह अपनी बात को समेटते हैं, और यही चीज़ें जवामियुल कलिम है। अच्छा हो गया जी बात वाजे, हलाल की गई इसके अलावा बाकी औरतें, कैसे करो अब यहाँ 1, 2, 3 लगाएं। उहिल्ला लकुम मा वरा ज़ालिकुम, हलाल की गई इसके अलावा जो बाकी औरतें हैं, कैसे हलाल है। अब कोई आपसे पूछता है, कोई नॉन मुस्लिम, उसको बिल्कुल नहीं पता कि इस्लाम में शादी क्या है, तो यहाँ से 1, 2, 3 करके मैं आपको इंशाल्लाह ये आयत और इसे अगली आयत में 4 नुक्तों पे पॉइंट लगवाऊंगी कि ये 4 चीज़ें हैं इस्लामी निकाह। पहली शर्त, अन तबतगू बी अमवालिकुम, कि तुम तलब करो अपने माल के जरिए, मुराद है हक मेहर दो। पहली शर्त तबतगू भी है, तलाश करना, और माल का जिक्र आ गया, यानी इसमें मुराद है हक मेहर। दूसरी शर्त मुहसिनीना गैर मुसाफिहीन, बशर्ते के निकाह के हिसार में इनको महफूज करो, आज़ाद शहवत रानी ना करो। ये दूसरी शर्त है, क्या नीयत घर बसाने की हो, सिर्फ ख्वाहिश पूरी करनी नहीं, यानी सिर्फ एक सेक्स ऑब्जेक्ट नहीं है औरत, इसको खेल ना समझो, एक मशगला ना समझो। याद रखिए वो निकाह जिसमें मुद्दत मुतय्यन कर ली जाए वो हराम है। मसलन लोग पेपर मैरिज करते हैं, ये 3 महीने के लिए शादी हो रही है, हम अमेरिका में जा रहे हैं, चलो वहाँ 3 माह रहेंगे, एक औरत से शादी करेंगे, ना हम उसको ला सकते हैं साथ, ना वो हमें रख सकती है, वापस आएंगे तलाक देंगे, ये जायज़ नहीं है। इसको निकाह मुता कहते हैं, मुता फ़ायदा उठाना। इवन शादी के वक्त कोई निकाह करते वक्त ये कह दे कि मैं 1,000 साल के लिए तुम्हें बीवी बना रहा हूँ, और भी सब कह दे सोच से, 1,000 साल तो उम्र किसी की होती भी नहीं है, फिर भी हराम होगा। मुद्दत का जिक्र नहीं होगा, ये दूसरी शर्त है, ठीक है, किसी भी सूरत में हम इसमें नहीं। अब आप ज़रा सा वो पीछे तलाक के दिनों में जो हमने पढ़ी थी बातें, हलाला को सोचें, उसमें क्या होता है, ये शर्त मफकूद होती है, वो घर बसाने का इरादा नहीं होता, घर तोड़ने का इरादा होता है, ठीक है, और खेल तमाशा बनाया जाता है। खैर थोड़ी सी मजीद डिस्क्रिप्शन दी गई, फमस्तम तुम भी ही मिन हुन्ना, बस जो कुछ भी तुमने इनसे फायदा उठाया, इस तमता में मता है तमत्तो, हज्जे तमत्तो मैं आपको बता चुकी हूँ ना, फायदा उठाना, मताउल गुरूर का लफ्ज आता है कुरान में दुनिया के लिए, बस जो भी तुमने इनसे तमत्तो किया यानी फायदा उठाया हो, तो इसके बदले क्या करो, फातू हुन्न उजूर हुन्न फरीदा, तो इनके मेहर अदा कर दो जो मुकर्रर हुए हैं। पीछे बड़ी डिटेल से बात हुई थी ना कि मेहर देना लाजिम है, तस्करा करना लाजिम है, फौरन अदा कर दो तो मुअज्जल है, थोड़ा देर से करोगे तो गैर मुअज्जल है, लेकिन तस्करा लाजमी है। और अल्लाह ताला यहाँ रग़बत दिला रहे हैं कि अदा कर भी दो, नाम का हक मेहर ना हो बल्कि हकीकी हक मेहर हो। दूसरी बात देखिएगा, वला जुनाह अलैकुम, और तुम पर इस पे कोई गुनाह नहीं, किस में, फीमा तरा दई तुम भी ही, इस मामले में कि तुम बाहमी राजी मंद हो। ये जो लफ्ज़ तरा दई में रा की खड़ी जबर है ना, रा अलिफ, ये असल में अलिफ था ना, तो ये असल में बाहमी है, म्यूचुअल, आपस में, मुराद है शौहर और बीवी दोनों राजी हों उस पर। मिम्बाद फरीदा मुकर्रर करने के बाद, यानी शादी हुई तो हक मेहर मुकर्रर हुआ 10,000 करोन देंगे, बाद में कुछ भी मामला हुआ, बीवी कहती है नहीं मुझे 5 ही बहुत है, ठीक है, बीवी कहती है, मर्द कहता नहीं ले लो से ज्यादा कोई बात नहीं मैं देना चाहता हूँ, कहती नहीं मैं 5 पे राजी हूँ, ठीक है। बाद सफा ऐसा होता है 10 मुकर्रर हुआ, बाद में मर्द कहता है मैं तुम्हें 12 देता हूँ, या बीवी कहती नहीं भी मुझे तो 12 चाहिए, मर्द कहता है क्या फर्क पड़ता है, दास नहीं है तो मैं तुम्हें 12 देता हूँ। तो गुना कब नहीं है, जब दोनों राजी होंगे, लेकिन मर्द बाय फोर्स बीवी से हक मेहर माफ नहीं करवा सकता, ठीक है, ये मुराद है। और अगर कोई करेगा तो याद रखे कि इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, यकीनन अल्लाह ताला इल्म वाला भी है और हिकमत वाला भी है। बात वाज़े, इस आयत में कितनी शरायत आई निकाह की, क्या क्या आई बताइए, माल के जरिए, घर बसाने की नीयतों। देखिए इसमें दो ही आई हैं, अभी दो आगे आ रही हैं, बात समझे। तब तहु को बाज लोग कहते हैं तब तहु में इजाबो कबूल है, यानी मुंह से बोल के कबूल है वाली जो बात है, या लड़का बाप से जाकर तलब करे, रिश्ता मांगना जिसको कहते हैं, तो लव सिर्फ तब तहु में वो भी आती है। यानी शादी ऐसे नहीं हो सकती कि बस मैंने सोच लिया। जैसे एक दफा किसी का किस्सा सुनना था, तो वो कहते हैं हम दोनों लड़का लड़की हरम में गए, उमरे पे गए, और हरम में जाके अल्लाह के घर के सामने खड़े होके कह दिया कि आज से तू मेरी बीवी है और मैं तेरा शौहर हूँ। वो जैसे इंडियन फिल्मों में आप देखते हैं कि मंदिरों में जाकर आग के सामने खड़े होकर कहते हैं, तो ऐसा निकाह नहीं होता। आप काबे के अंदर भी जाके ये जुमला बोल देंगे तो नहीं होगा। अंत अब तहु तलब, इजाबो कबूल उर्दू में इसको कहते हैं, ठीक है। और इसमें हक महर का जिक्र आ गया। तीसरी चीज इसमें घर को बसाने की है। अगर अंदाजन देखें तो मुराद ये कि सिर्फ शहवत रानी ना हो, बाय पार्ट्स में करें तो वो चीज आती है। अब हालांकि शायद में बहुत कुछ और है, लेकिन मैं अगली आयत साथ इसलिए पढ़ूंगी कि पहले वो चीजें पूरी हो जाएं जो निकाह में लाजमी है, इसलिए आयत 25 पे चलिएगा।